समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खबरों का लेखा जोखा, इतिहास के पन्ने, खेलों की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, इन सब का लेखा जोखा लेकर आज मैं हूं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ नवीन सक्सेना। नमस्कार वैभव।
प्रणाम एंड हेलो नवीन, एंड आई विशिंग यू अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड टू आकाशवाणी गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। विशिंग यू ऑल गुड हेल्थ, गुड लक and an amazing new day. As always, we bring you our forever exciting daily news magazine program, Aaj Savere. In the next half an hour, we'll bring you the latest in national and international news, some metro city updates, and of course, some trivia related to this day.
वैभव, लोकसभा के उत्सव का पहला चरण जो है वो आज शुरू हो गया है। देश में कई हिस्सों में पहले चरण के अंतर्गत वोट डाले जा रहे हैं और आकाशवाणी की नजर आज पूरे दिन भर मतदान केंद्रों पर रहेगी कि क्या कुछ वहां पे चल रहा है। लेकिन शुरू शुरू में कहां पे क्या कुछ अब शुरू हो चुका है, बिहार में शुरू हो चुका है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और वैभव इशारा कर रहे हैं कि उनके पास एक डिटेल्ड रिपोर्ट है कि क्या कुछ वो बताना चाहते हैं, क्या कुछ शेयर करना चाहते हैं आपके साथ।
Absolutely, Naveen rightly said, it is our right and we have to exercise this franchise so that we can strengthen the democracy even more. Starting with the headlines, we go over to this detailed story. As you just mentioned, voting has begun for the first phase of Lok Sabha elections. A total of 102 parliamentary constituencies spread over 17 states and 4 union territories are going to pose today. These are from states including Uttar Pradesh, West Bengal, Bihar, Assam, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, Manipur and Meghalaya. A total of 1,625 candidates are in the fray in this phase. Among those prominent are senior BJP leaders and union ministers Nitin Gadkari, Sarbanand Sonowal, Kiran Rijiju, Dr. Jitendra Singh, Sanjeev Balyan, as well as senior BJP leaders Thamizhai Sundararajan and Jitin Prasada, and Congress leaders Gaurav Gogoi, Karthi Chidambaram and Nakul Nath, and DMK's Dayanidhi Maran are the prominent faces whose political fate will be sealed in the EVMs today. 1,63,000 polling stations have been set up for 16 crore 63 lakh voters in this phase. Out of the total voters, 8 crore 40 lakhs are male, 8 crore 23 lakhs are female, while over 11,000 are third gender electors. Around 36 lakh first-time voters will also exercise their franchise. In this phase, over 14 lakh 85+ voters and around 14 lakh PWD voters have been provided the option to vote from their homes. The Election Commission has ensured that basic facilities like water, sheds, toilets, ramps, volunteers, wheelchairs and electricity are in place so that every voter can cast their vote with ease. Besides, polling is also being held for electing new legislative assemblies in Arunachal Pradesh and Sikkim in a single phase today.
भारत जैसे विशाल देश में चुनाव कराना अपने आप में एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव अधिकारी लगातार इसमें जुड़े हुए हैं। कितने से भी कितना दुर्गम स्थान हो, वहां पे चुनाव जरूर होता है, वहां पे मतदान जरूर होता है और कोशिश ही की जाती है कि वहां के रहने वाले जितने भी निवासी हैं अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। बिहार की बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए नक्सल प्रभावित 4 निर्वाचन क्षेत्रों गया, जमुई, औरंगाबाद और नवादा में मतदान इस समय शुरू हो रहा है, मतदान चल रहा है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं, ऐसी खबर आ रही है। महिला और विशेषकर युवा मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इन 4 लोकसभा सीटों में लगभग 76 लाख से अधिक मतदाता यहां से चुनाव लड़ रहे कुल 48 उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं और निर्वाचन आयोग ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर मतदान का समय जो है घटाकर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आज से शुरू हो रहे लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवा और पहली बार मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने का आह्वान किया है और उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में हर वोट और हर आवाज का महत्व होता है।
Chief Election Commissioner Rajiv Kumar has appealed people to vote in the Lok Sabha polls beginning today. Speaking to media, Mr. Kumar said, "Today is the day of voting and a large number of security and non-security measures are in place." He said, "Election Commission is welcoming everyone to polling stations and people must come and vote." Mr. Kumar said, "More than 16 crore voter slips have been distributed in the phase one of Lok Sabha polls. On internally displaced voters in Manipur," the Chief Election Commissioner said, "the poll body has made special scheme that in the camps so that people there can vote today." He said over 18,000 people have registered with the commission for voting from the camps. Mr. Kumar said the focus of the commission is that nobody is disenfranchised.
नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वो एडमिरल आर हरिकुमार का स्थान लेंगे जो इस महीने की 30 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को कर्तव्य परायणता के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक और नौसेना पदक से सम्मानित किया गया है।
In Assam, polling has begun at 7 a.m. and continued till 5 p.m. in five seats. A total of 35 candidates are in the fray in this phase. Over 86 lakh voters could exercise their voting rights today at Jorhat, Dibrugarh, Lakhimpur, Sonitpur and Kaziranga Lok Sabha seats. All the seats are likely to witness a straight contest between the Congress and the United Opposition Forum Assam. Political fate of several heavyweight candidates will be sealed in the first phase. Union Minister Sarbanand Sonowal, BJP MP Pradhan Barua, Thopon Kumar Gogoi and Kamakhya Prasad Tasha, Congress MP Gaurav Gogoi and President of the Assam Jatiya Parishad, Lurunjyoti Gogoi are in the fray in this phase. Central Armed Police Forces and micro observers have been deployed in all the critical polling booths. In Maharashtra, Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi will address an election campaigning rally in favour of BJP candidate from the Wardha constituency at Talegaon village this evening. Sitting BJP MP Ramdas Tadas will be contesting this election as Mahayuti candidate for the third time. While from the Mahavikas Aghadi, Nationalist Congress Party, Sharad Chandra Pawar faction has fielded Amar Kale from the Wardha constituency. The NCP candidate is contesting for the first time from this constituency. The Bahujan Samaj Party has given candidature for Dr. Mohan Raikwar. Total 24 candidates are in the fray in this constituency. Wardha and other four constituencies in Western Vidarbha, Amravati, Yavatmal, Vashem, Buldana and Akola will go to the poll on the 26th of this month.
और अब बात भारतीय प्रौद्योगिकी की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कल एक और मुकाम हासिल किया जब स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये परीक्षण ओडिशा में चांदीपुर रेंज से किया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय वायुसेना के SU-30 और MKI विमान ने मिसाइल के परीक्षण की निगरानी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को बधाई दी है। और अब बात क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में कल चंडीगढ़ में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 9 रन से हरा दिया और आज लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। और अब बात आपके शहर की। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के साथ है वैभव और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में क्या हो रहा है।
Yes, Naveen, starting the metro update section with Chennai, where the Madras High Court has directed the Tamil Nadu government to issue a circular to all hospitals in the state to record the blood alcohol level of the injured and deceased of road accidents if they suspect them to be drunk. Justice A. N. Anand Venkatesh said, "This practice shall be made mandatory since there is an increase in drunk driving cases." The judge added that this will help the motor accident claims preferred by such people to be decided in a proper manner while determining the issue of negligence to be attributed in an accident. The BIT Engineering Entrance Exam for admissions to BTEC programs will begin today. The online proctor test will be held in 125 cities across the country and 6 cities abroad, Dubai, Muscat, Qatar, Kuwait, Singapore and Kuala Lumpur. Applicants from all the states and union territories will participate in the VITEEE 2024 examination. The results will be available on May the 3rd on the website. The counseling process will begin on the same day. Applicants within 1 lakh ranks are eligible to participate in the counseling for admission to BTEC programs of all campuses of VIT Vellore, Chennai, VIT AP and VIT Bhopal. Now moving over from Chennai, we go over to Bengaluru, wherein 9,000 people have responded to the offer given by the Bengaluru Water Supply and Sanitation Board, BWSSB, to nominate Jal Mitras in Bengaluru to spread the message of water conservation. Speaking at the training program for the nominated Jal Mitras, the BWSSB Chairman Dr. V. Ramprasad Manohar called upon them to work as ambassadors to make Bengaluru a surplus water city. He thanked the people for responding to work for the welfare of the city without any remuneration. He said the aim is to achieve surplus water city status for Bengaluru by 2026. He saw the assistance of Jal Mitras in popularizing rainwater harvesting and water conservation among the public. He added that the water board will promote use of treated water, recycling of water and measures to mitigate wastage of water. And I mean, truly, this is a wonderful example of public, private, or let's say the government and the collaboration of public so that the water crisis can be averted and such things do not happen again. Moving over from Bengaluru, we go over to Hyderabad, where the Hyderabad District Electoral Authorities have booked cases under the RP Act 1951, Section 134, against some of the officials who did not attend the election training. District Electoral Officer Ronald Rose informed that the cases registered against some of them who did not attend the training despite reminders. Among the officials deployed on poll duty and did not turn up for training, including Assistant Professor, Osmania University, Dr. J. Krishnaya from the Education Department, Mirza Nasir Beg, besides a few senior assistants and junior assistants from various departments have been booked. The authorities have informed that about 20,000 officials and staff did not attend the poll training. They further informed that stern action will be taken if they do not attend the last round of training to be held on the 20th of this month. Well, those were the updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Naveen, what's going on Delhi, Mumbai and Kolkata?
बात सबसे पहले दिल्ली की. आम आदमी पार्टी ने आगामी दिल्ली नगर निगम के महापौर के चुनाव के लिए करोलबाग विधानसभा में देवनगर से निगम पार्षद महेश खीची को अपना प्रत्याशी घोषित किया है. इसके अलावा उपमहापौर के पद के लिए पार्टी ने किरारी विधानसभा में अमन विहार वार्ड से निगम पार्षद रविन्द्र भारद्वाज के नाम की घोषणा की. दिल्ली निर्वाचन आयोग ने अपनी स्वीप पहल के तहत चुनाव के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए कल उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए. इसके अलावा उन्होंने दक्षिणी जिले में कई पार्कों और कॉलेजों में लोगों को चुनाव के लिए शपथ भी ग्रहण करवाई. उत्तर पश्चिमी दिल्ली स्थित लाडपुर गांव के जैदादा पावपारा मैदान में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए फुटबॉल प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है. दिल्ली में अगले महीने होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है. सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं. दिल्ली में छठे चरण के तहत मतदान के लिए 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी और मतदान 25 मई को होगा. मतगणना 4 जून को संपन्न होगी. दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने विश्व पार्किंसन रोग दिवस के अवसर पर कल पार्किंसन रोग जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया. संस्थान ने बताया कि इस वार्षिक कार्यक्रम में पार्किंसन रोग से पीड़ित रोगियों, उनके देखभालकर्ताओं तथा जन सामान्य सहित लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया. बात करते हैं मुंबई की. यात्रियों की सुविधा के लिए मौजूदा अवकाश अवधि के दौरान यात्रा की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे ने विशेष किराए पर 13 ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है. वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कल नारायण राणे को सिंधुदुर्ग रत्नागिरी निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया. भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 13वीं सूची की घोषणा की है. और अब रुख कोलकाता का। कोलकाता में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और ये लगभग 40 डिग्री के आसपास छूने की तैयारी में है। अब इसे देखते हुए कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने घर घर वाटर मीटर इंस्टॉल करने की एक योजना बनाई है ताकि पानी की जितनी भी वेस्टेज है, बेवजह लोग जो पानी का उपयोग कर रहे हैं, उस पर थोड़ी सी रोक लगाई जाए। कल कॉरपोरेशन मेयर फिरहाद हकीम ने बताया कि पटौली एरिया के कुछ गांवों में वाटर मीटर इंस्टॉल कर दिया गया है, हालांकि जो मुख्य समस्या आ रही है वो है चोरी की और डैमेज इंस्टॉल्ड मीटर की। तो ये थी अब तक की कुछ खबरें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की। और अब बात शहर के मौसम की। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मौसम सुहावना ही है, लेकिन कभी कभी तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो ही जाती है। ख्याल रखिएगा अपना। आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री के आसपास रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, लेकिन तापमान वहां भी 34 डिग्री को छुएगा, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहेगा। कोलकाता अभी हमने बात की है, अब आज का तापमान जो है, जो मौसम विभाग कहता है, 41 डिग्री के तक पहुंच सकता है। हां, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास रहेगा। देश के बाकी हिस्सों का हाल क्या था?
Chennai is expected to have cloudy skies. The minimum temperature was 29 and the maximum will be around 37. Bengaluru is expected to have partly cloudy skies. The minimum temperature was 28 and the maximum will be around 34. Hyderabad is expected to have partly cloudy skies as well. The temperature will hover between a minimum of 26 and a maximum of 39 degrees Celsius.
अब पलटते हैं आज सवेरे का एक और पन्ना और इतिहास में ढूंढ लाते हैं कि क्या कुछ आज हुआ था। आज दुनिया भर में कहीं भी अंतरिक्ष की बात हो तो भारत का जिक्र जरूर किया जाता है। पिछले कुछ सालों में भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष मामलों में भारत को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों की श्रेणी में ला दिया था। और वो क्यों हुआ था? क्योंकि दुनिया में कई देश अपने अपने अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए भारत की मदद लेते हैं। हालांकि इसरो ने भी एक साथ 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करने का कारनामा किया था, लेकिन आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन 1975 में भारत के अंतरिक्ष सफर की शुरुआत हुई थी, जब भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में लॉन्च किया था, जो पूरी तरह से भारत में निर्मित था। और कहते हैं कि तब इसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए थी। सोवियत संघ के साथ एक समझौता हुआ था जिसके तहत इसको लॉन्च किया गया था। भारत ने आर्यभट्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च तो कर दिया, लेकिन 4 दिन बाद ही कुछ गड़बड़ियां आने लगी और 5वें दिन सैटेलाइट से संपर्क टूट गया और 10 फरवरी 1992 को उपग्रह पृथ्वी पर वापस लौट आया। इस दिन को सेलिब्रेट किया था रिजर्व बैंक ने और 1976 और 1997 के 2 रूपये के नोट पर इस सैटेलाइट की तस्वीर लगाई गई थी। नाम था आर्यभट्ट और इसलिए नाम था क्योंकि ये महान खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर इनका नाम रखा गया था।
Well, going a little further back in history, as we usually do, in the year 1770, Captain James Cook, still holding the rank of a lieutenant, sights the eastern coast of what is now Australia. In 1839, the Treaty of London established Belgium as a kingdom and guaranteed its neutrality. And in 1950, Shyama Prasad Mukherjee had resigned. He was the first minister of the central cabinet.
थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बात 1775 की करते हैं। वैभव, 1775 में अमरीकी क्रांति हुई थी और इस दौरान अमरीकी सेना का जो नेतृत्व किया था वो जॉर्ज वॉशिंगटन ने किया था। अमरीका के स्वतंत्रता आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, यूं मान लीजिए कि वो आज ही के दिन से 1775 में हुई थी। उस समय अमरीका पर इंग्लैंड का कब्जा था और आज ही के दिन क्रांति की शुरुआत हुई थी। और 1775 में उस क्रांति के दौरान जो अमरीकी सेना का नेतृत्व किया था, जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन ने किया था। और 1789 में वो अमरीका के पहले राष्ट्रपति भी चुने गए थे और उन्हीं के नाम पर वॉशिंगटन शहर का भी नाम रखा गया है।
In 1971, Sierra Leone became a republic and the Siaka Stephens the president of the country. In 1971, the launch of Salyut 1, the first space station, happened. And in 1976, Maharishi Dayananda University was established in Haryana.
1919 में वो आज ही का दिन था जब अमरीका के लेस्ली इरविन ने पैराशूट से पहली बार छलांग लगाई थी, अपने आप में इतिहास है। और 1972 वो आज ही का दिन जब बांग्लादेश राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था।
1987 द सिम्पसन्स फर्स्ट अपीयर्ड एज अ सीरीज ऑफ शॉर्ट्स ऑन द ट्रेसी उल्मन शो फर्स्ट स्टार्टिंग विद गुड नाइट। इन 1996 एड्स वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कंटेजियस डिजीजेस इन द रेलवे एक्ट ऑफ 1989। In 1997, I.K. Gujral, the External Affairs Minister, was chosen the leader of the United Front in place of Devegowda. In 2021, the Ingenuity helicopter became the first aircraft to achieve flight on another planet.
इतिहास में अब बात करते हैं उन व्यक्तियों की जो जुड़े हुए हैं आज के दिन से, और कहीं ना कहीं उन्होंने हम पर छाप छोड़ी है। तो सबसे पहले बात पुण्यतिथि की, आज पुण्यतिथि है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन देने वाले चार्ल्स डार्विन की। आज ही के दिन 1882 में उनका निधन हुआ था, और साल 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की किताब छपी थी जिसने दुनिया के बारे में सोच बदल के रख दी थी। इस किताब से उस वक्त बेहद हंगामा हुआ था। बहरहाल चर्चा इसलिए नहीं, चर्चा इसलिए क्योंकि आज चार्ल्स डार्विन की पुण्यतिथि है।
Had it is said Naveen, he had not published the theory of evolution, he was already a prolific writer, and his book The Voyage of the Beagle about the South Americas and his extensive studies on geology had already made him a name of repute. Darwin has been described as one of the most influential figures in human history and was honored by a burial in the Westminster Abbey. Also, it is the death anniversary of another great scientist, Pierre Curie, a French physicist, a pioneer in crystallography, magnetism, piezoelectricity and radioactivity. In 1903 he received the Nobel Prize in Physics with his wife Marie Sklodowska Curie and Henri Becquerel in recognition of the extraordinary services they have rendered by their joint researches on the radiation phenomena discovered by Professor Henri Becquerel.
आज युवा क्रांतिकारी अनंत लक्ष्मण कन्हरे की भी पुण्यतिथि है। भारत के युवा क्रांतिकारियों में से एक थे। जन्म हुआ था 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर में, और देश की आजादी के लिए शहीद होने वाले युवाओं में उन्हें गिना जाता है। जब उन्हें फांसी दी गई थी तब उनकी उम्र सिर्फ 19 वर्ष थी। हुआ कुछ यूं था कि 1909 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक लेख लिखने के कारण गणेश सावरकर को आजन्म कारावास की सजा हुई। अंग्रेजों के इस फैसले से क्रांतिकारियों में उत्तेजना पैदा हो गई, उन्होंने बदला लेने की ठानी और उन्होंने नासिक के जिला अधिकारी जैक्सन का वध करके इसका बदला लेने का निश्चय किया। कन्हेरे ने इस काम का जिम्मा अपने ऊपर लिया। पिस्तौल का प्रबंध हुआ 21 दिसंबर 1909 को, जब जैक्सन एक मराठी नाटक देखने के लिए आ रहा था, तभी अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने उन पर गोली चला दी और वहीं पर वो मारा गया। बाद में उन्हें पकड़ लिया गया और 19 वर्ष की अवस्था में युवा क्रांतिकारी अनंत लक्ष्मण कन्हरे को फांसी दे दी गई।
इट इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, an Indian-born British hunter, tracker, naturalist and author. He was frequently called upon the government of the provinces of United Agra and Oudh to kill man-eating tigers and leopards that were attacking people in the nearby villages of Kumaon and Garhwal. He recounted his hunts and experiences in books like The Jungle Stories, The Man-Eaters of Kumaon from the Oxford University, The Man-Eating Leopard of Rudraprayag, My India, Oxford University Press, and Jungle Lore, among many, many others. It is also the death anniversary of a singer who rose to fame in the 1940s, entertaining the crowds after the Great War. His name was Steve Conway. Known for his romantic ballets, he made dozens of recordings for EMI's Columbia label, appeared regularly on BBC Radio, and toured the UK before his career ended at the age of 31. He was the first post-war male heartthrob. Let's remember him with his track, Good Luck, Good Health.
Good luck, good health, God bless you. That's all my heart can say. Good luck, good health, God bless you.
आज सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता सुमित्रा भावे की भी पुण्यतिथि है। आज के दिन उनका निधन हुआ था। वो मराठी सिनेमा और मराठी थिएटर में फिल्म निर्माता सुनील सुकथनकर के साथ एक जोड़ी के रूप में लोकप्रिय थी और अपनी आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट के साथ ही अपनी फिल्मों के लिए सामाजिक मुद्दों को संभालने के उनके तरीकों के लिए वो जानी जाती है। अब बहुत से पुरस्कार से उनको नवाजा गया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की श्रेणियों के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी सुमित्रा भावे ने जीते हैं।
It is the birth anniversary of Bobby Russell, a singer-songwriter. In between the 1966 and 1973 era, he had 5 singles on the Hot Country singles charts with the crossover pop hit Saturday Morning Confusion.
Here they come, warming up. I hear the pitter-patter of little people on the living room rug. Woe is me, there goes the TV. Now it's Popeye and Pluto, Batman and Bozo. Don't spill the cornflakes, they'll break at lunch break. Home from the office. Why did I stop to have a beer with the boys? Now my head's about to pop. It's Saturday.
आज जयंती है पंजाब के प्रसिद्ध आर्य समाजी नेता, समाज सुधारक और शिक्षाविद महात्मा हंसराज की। आज के दिन 1864 में उनका जन्म हुआ था और उनके महत्वपूर्ण योगदान और प्रयासों के फलस्वरूप ही देश भर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की गई थी और उनके नाम से 750 से भी ज्यादा कॉलेज उनके नाम पे। अगर उनके कार्यों पर छोटी सी नजर डालें तो सन 1922 में हंसराज जी ने केरल के 2,500 से भी अधिक लोगों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने का काम किया था। केरल में मोपला विद्रोह हुआ था, उसके बारे में आप पढ़िएगा, जिसमें बलपूर्वक जो है धर्म परिवर्तन किया गया था, लेकिन वापस इन्होंने इन तमाम लोगों को हिंदू धर्म में वापस ले आए थे, परिवर्तित कर दिया था।
It is the birthday of Anju Bobby George. She made history when she won the bronze medal in long jump at the 2003 World Championships in athletics in Paris. With this achievement, she became the first Indian athlete ever to win a medal in a World Championships in athletics. She has been a prolific promoter of the sport and women empowerment in India, and we wish that more such women come up and give laurels to the country.
हिंदी सिने जगत के कुछ कलाकार ऐसे रहे हैं जिनकी भूमिका भले ही छोटी रही हो, लेकिन उनके सशक्त अभिनय ने उनको अपने आप को भीड़ से अलग रखा। ऐसे ही एक थी सुरेखा सीकरी। आज उस महान शख्सियत की जयंती है। बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम किया, फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। तमस के हम उनको जान सकते हैं, बालिका वधू में उनको जान सकते हैं, फिल्म बधाई हो में भी उन्होंने काम किया। एक इंटरव्यू है, क्या कहती हैं ये सुनते हैं सुरेखा सीकरी।
ड्रेसिंग गाउन पहन के वो मूछ मूछ लगा, लेकिन बिल्कुल भी मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। धीरे धीरे सीखना शुरू किया। 3 साल का कोर्स था और अच्छे टीचर्स थे, अल्फाजी साहब थे, एटमोसफेयर एकदम चार्ज होता था, डिसिप्लिन वगैरह, तो काफी सीखते गए हम लोग। अलग अलग पहलू, प्ले एनालिसिस, एक्टिंग क्लासेस होती थी, कॉस्ट्यूम डिजाइन क्लास, मेकअप सीखते थे।
सुरेखा सीकरी की थी, एक छोटा सा इंटरव्यू था। करियर की शुरुआत 1978 में राजनीतिक ड्रामा फिल्म किस्सा कुर्सी से उन्होंने शुरू की थी। आइए सुनते हैं उनका एक बेहतरीन डायलॉग।
आप कहीं जा रही हैं?
हाँ, वो भैरों में कल सुबह कोर्ट कचहरी के काम से जयपुर जा रहे हैं।
जयपुर या मुंबई?
बहुत खुशी मिलेगी तुम्हारी जीजी को। तुम लोग वक्त से पहले दिवाली मनाने को तैयार हो?
माता, ये पूछने की नहीं, आदेश देने की बात है। मासी जी की खुशी के लिए जो होगा सब करेंगे हम।
ये थी सुरेखा सीकरी, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार और स्क्रीन पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया।
ऑल्सो इट इज द बर्थडे ऑफ वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से वर्सटाइल एक्टर्स इन द इंडियन इंडस्ट्री ऑफ सिनेमा एंड टेलीविजन। लेट्स हियर हिज डायलॉग फर्स्ट।
भाई, तुमको ये हॉस्टल विस्टल में रहने की क्या जरूरत है?
ये भाई साहब, ये 12 नंबर किधर है?
ये रहा।
अरे तेरी भाई, ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार।
तेरे को मालूम है, भगवान ने अपन को ये एज कॉलेज में काय को भेजे है।
भगवान ने अपने को तो नहीं बताया।
भगवान बोला जा तेरे बाबूजी को जिसने रुलाया ना उससे हिसाब चुकता करने का।
सही है भाई, अभी भगवान के साथ तुम्हारा डिस्कशन हो गया ना, कल चले संभाला। भाई एक काम करते हैं, अपन ये दीवार को खसका के ये बाजू का कमरा अंदर ले लेते, अपना एरिया बढ़ जाएगा यहाँ पे। और ये एक टीवी पीछे रख टेबल पे। और भाई ये है ना, ये दीवार तोड़ डालते हैं, सामने वाले को हटा के ना इसको बाथरूम में आते एकदम बाथटब बिटल सड़े इधर।
Yes, dear listeners, it is the birthday of Arshad Varshi. Having worked in so many movies, प्यार की जीत हिज फर्स्ट वन इन 1999, हलचल, मैंने प्यार क्यों किया, सलाम नमस्ते, गोलमाल एंड ऑफ कोर्स द मुन्ना भाई सीरीज. हियर इज अ ट्रैक फ्रॉम वन ऑफ हिज लेसर नोन मूवीज, हम तुम्हारे होस्ट.
आज सवेरे के आज के संस्करण में बस इतना ही. मैं नवीन और वैभव अपनी एडिटर जिज्ञासा और प्रोडक्शन असिस्टेंट राजेश के साथ बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं. सफल मनुष्य वही है जो सभी के हितों का ध्यान रखता है.
Stay tuned for coming up next. समाचार प्रभात, हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. हैव अ लवली डे. नमस्कार.